ये बहुत ऊंची बात है, ये बहुत ऊंचा प्रयोग है और बहुत ऊंचा फायदा देने वाला है। मैं चाहता हूं कि ये जो सत्संग आप सुने ना, तो उसका ऐसा प्रभाव रहे कि चाहे कभी मौत आ जाए, यमराज के यमदूतों की ताकत नहीं कि मेरे शिष्यों को नरक दिखा दे। मेरे मंत्र दीक्षा लिए हुए साधक को नरक में जाना पड़े, अथवा दूसरा जन्म लेने को आए, किसी का गर्भ मिले न मिले, फिर बाथरूम में बह जाए, तो फिर मेरा साधक मंत्र दीक्षा का क्या फायदा। तन सुकाए पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे नवासना बिना विचारे ज्ञान। सारे जगत का जो दुख है उसका मूल क्या है? सारे लोग सुबह से शाम तक जो भी कुछ करते हैं तो दुख मिटाने के लिए और सुख को पकड़ रखने के लिए, और फिर भी लोग दुखी दुखी पाए जाते, क्यों? कभी विचार किया है? दुख मिटता नहीं, सुख टिकता नहीं, ऐसा क्यों? और जो सुख पाने का अधिकार नहीं होता तो सुख की लालच ही नहीं होती, और दुख मिट नहीं सकता तो दुख मिटाने के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं करता। तो दुख त्याज्य न होता तो दुख त्यागने के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं कर सकता, और सुख पाने का अधिकार नहीं होता तो सुख के लिए ललक ही नहीं होती। तो सुख के लिए ललक है और दुख को त्यागने में भी लगे हैं, फिर भी बेचारे दुखी दुखी हैं, तो कहां मूल गलती कहां है? दो मना दुष्ट न चाहने वाली परिस्थिति, ख मना आकाश, जैसे आंधी चली, तूफान चला, बालू उड़ा, तो आकाश में दुष्टता आ गई, दुख। तो तीन आकाश होते, ये भूताकाश। ऐसे हमारे हृदय के आकाश में वासना आई, चिंता आई, शत्रुता आई, भय आया, शोक आया, तो हृदय काश में भी दुख होता है। किसी के मरने से दुख नहीं होता, किसी के जीने से दुख नहीं होता। ऐसे तो कई लोग पैदा हो रहे, तो आपको क्या दुख हुआ, क्या सुख हुआ? कई लोग मर रहे हैं। अगर शत्रु मरता है तो मजा आता है, और मित्र मरता है तो दुख होता है। तो दुख किसको हुआ? ममता को हुआ। सुख किसको हुआ? बोले वासना को हुआ। तो जब वासना अनुसार ही घटना घटती है तो सुख होता है, और ममता अनुसार ही घटना घटती है तो सुख होता है, और वासना और ममता के विपरीत घटना घटती तो दुख होता है। तो जो संसार में ये पाऊं, ये करूं, ये करूं, ऐसा हो, इस प्रकार की धारणा, उससे मैं सुखी होऊंगा, इस प्रकार की मान्यता अज्ञान से रख के ऐसा होता है तो लोग सुखी होते हैं। बर्नार्ड शो कितना बुद्धिमान तत्व चिंतक हो गया, उसने बोला 11 आदमी, जॉर्ज बर्नार्ड शो, 11 आदमी कूद फांद करे क्रिकेट की, और 11,000 मूर्ख तालियां बजाकर सुख लेवे, मजा लेवे। तो ये 11,000 पागलों की महफिल है जॉर्ज बर्नार्ड शो ने का, 11 मूर्खों को देखने के लिए 11,000 मूर्ख टाइम गंवाए और अपने को मजा लिया, मजा आया कहें, इसी का नाम है क्रिकेट मैच। मनुष्य कितना ऊंचा है और कोई कूदे फांदे फिर सुख मिले, तो कितनी बर्नार्ड शो की सूझबूझ की बात है कि मूर्खता है। तो कोई नाचे, कोई फूदे, कोई कुछ करे, कोई कुछ दे, तब हम सुखी हों, ये मन की बेवकूफी हमारी। हमारे मन में अंदर में कितना सुख स्वरूप परमेश्वर सत्ता पड़ी है उसका पता नहीं। पत्नी पत्नी से भीख मांगेगा, पत्नी को सताकर सुखी होता है पति, और पति को सताकर पत्नी सुखी होती। अगर सुख टिकता तो फिर दोनों फै क्यों हो जाते। जय राम जी की। नौकर को नोचकर सेठ सुखी होना चाहता और सेठ को आधीन करके नौकर सुखी होना चाहता। सेठ को आधीन करके मुनीम उसको पैसे कमा देता और मुनीम को आज्ञा में रखकर सेठ सुखी होना चाहता है। न सेठ सुखी है, न मुनीम सुखी है, न नौकर सुखी है। ऐसे ही नेता को आधीन करके कार्यकर्ता उनका प्रचार करना चाहेंगे। नेता अगर हमारी माने, हमारे कहने भी चले, और कार्यकर्ताओं को आधीन रखकर नेता जीतना चाहता है। न नेता सुखी है, न कार्यकर्ता सुखी है। एक दूसरे को नोच नोच के सुखी होने की जो रीत है वही दुख का मूल है। अगर अनुभव नहीं हुआ तो और करके देख लो। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख, भय और रोग नहीं। बाहर के सुख में दुख है, भय है, रोग है, और अंतरात्मा के सुख में निर्भयता है, निरोगता है और माधुर्य है, नित्य नवीन रस है। संसार का सुख शुरू में अच्छा लगता है, बाद में थका देता है, नोच देता है, और अंतरात्मा का सुख शुरू में जरा अनजाना देश है, अनमिला पिया है, थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन कोई समर्थ गुरु मिल जाए और ईमानदारी से चलने वाला मिल जाए तो फिर तो मौज ही मौज हो जाती। सुख तुम्हारा स्वाभाविक सुख था भाई, उस स्वाभाविक सुख के अनजाने देश में गए थे भी। ध्यान में जानकर जाओ तो हो मौज हो जाए। दिल ने तस्वीरें हैं यार जब की गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। सुख स्वरूप परमात्मा भरा है तुम्हारे अंतर, लेकिन अभागी इच्छाएं वासनाएं, ये करूं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा बनाऊं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा करूं तो, बाहर आके भटका देती, भिखमंगा कर देती। जितनी इच्छाएं अधिक, जितनी आवश्यकताएं अधिक, उतना वो आदमी दुखी। जितनी इच्छाएं और आवश्यकताएं कम और अंतर आत्मा में आराम, उतना वो सुखी। शबरी कितनी सुखी कि श्री राम उसके झूठे बैर खा रहे। मीरा कितनी सुखी कि अकबर और तानसेन उसके चरणों में आकर शांति पा रहे। मेरे गुरुजी कितने सुखी कि हम लोग उनके चरणों में पहुंचे तो हमें भी सुख का रहस्य समझ में आए, और हम भी अभी कितने मौज में कि हमारा इंतजार करके हजारों लाखों लोग टीवी के सामने बैठे रहते। क्यों, क्या है? अरे तुम्हारे अंतर आत्मा में वो सुख का खजाना है, उसको पाना सीख लो। दिल देके देखो, दिल देके देखो बाबू, दिल लेने वाले दिल देना सीखो जी। एक बार अपना दिल दिल भर को परमात्मा को दो, फिर परमात्मा को छुआ कर दिल को संसार में ले आओ। सुख लेने के लिए नहीं, सुख बांटने के लिए। मौज हो जाएगी मौज। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, आपकी निगाहों से भी वो सुख स्वरूप ईश्वर के तरंग बरसे, आपकी वाणी से भी, आपके शरीर को छूकर हवाएं भी वो पवित्र आंदोलन फेंके। ऐसा परमात्मा है आपके साथ, लेकिन चालबाजी से, कपट से, इससे वासना पूर्ति और भोग, संसारी भोग और संग्रह, ये दो गलती है सारे दुखों के मूल में। नाक से मजा लें, जीभ से मजा लें, काम इंद्री से मजा लें, वाहवाही का मजा लें, बाहर से मजा अंदर भरा। इसलिए बाहर की चीजें 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 और संग्रह और कपट मांस। एक ब्राह्मण को भी ऐसी भ्रांति हो गई तो धन हो, अच्छा मकान हो, ठाट माट से सुखी जिंदगी जिए, तो उसने यक्ष की उपासना की, साधना की। यक्ष की उपासना साधना की, ब्राह्मण जरा नियम से करता था, तो जो वो सकाम भाव से नियम निष्ठा से करते हैं तो उसका फिर संकल्प फलता है। तो यक्ष प्रकट हुए, देवता तुमने मेरी खूब उपासना की, ब्राह्मण देवता क्या चाहते हो? बोले धनम देहिम यशम देहिम, ये महाभारत में कथा थी, धन मिले यश मिले। महाराज यक्ष जरा बुद्धिमान रहे, बोले ब्राह्मण धन से और बाहर की वाहवाही से थोड़ी दिन के लिए सुख का आभास आएगा, दुख पूरा मिटेगा नहीं। अगर धन और यश से दुख मिटता तो नेताओं का कितना यश होता है, कितने छाए रहते हैं टीवियों में, और धन भी देश परदेश में कितना होता है बेचारों के पास, सेठों के पास और लोगों के पास कई गुना। ये मैंने मिलाया, हाँ टीवी शब्द उसमें नहीं है। धन से और बाई वाहवाई से दुख नहीं मिटता और सुख नहीं टिकता, इसलिए तुम सच्चा धन पाने की तपस्या करते तो सच्चे धन को पाने से कभी दुख टिकता नहीं, सारे दुख मिट जाते और सुख के लिए भीख मांगनी नहीं पड़ती, सुख अपने हृदय में चमचमाता रहता है। निर्दोष बालक किसी को छू दे, किसी को देख ले, किसी के गोद में चलाए तो उसको सुख मिलता है, ये बालक का सुख कहाँ से आता है? सहज में ही सुख है, बालक की वासना सुषुप्त है, और ज्ञानी के दर्शन करने से भी सुख मिलता है सच्चे संत के, तो उनकी वासना व्यतीत है। अब ये कथा में विस्तार करने का हमको हक है, इतनी लंबी कथा नहीं है जितना हम समझाने के लिए कर सकते। तो यक्ष ने ब्राह्मण पर कृपा करके कहा कि तुम दुख मिटाना चाहते हो और सुख चाहते हो, तो धन और यश से, भोग और संग्रह से दुख मिटता नहीं और सुख टिकता नहीं, इसलिए सार वस्तु को मांगो। सार है, उत्तम सार है अध्यात्म। तो सुख पाना कठिन नहीं है, लेकिन सुख की और भोग की इच्छा छोड़ना बेवकूफी के कारण कठिन लगता है। हकीकत में जो कुछ मिलता है अपने आप छूटता जाता है, ध्यान देना। बचपन को छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया, बचपन के खिलौने भी छूट गए, नहीं छूटे, सब छूटता जाता है, लेकिन हम नई नई इच्छा करते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए। भोग और संग्रह की इच्छा छोड़ दें तो अपने आप प्रारब्ध वेग से जैसा भी मिले बड़ा आनंद होगा। बाहर से सुख लेने के लिए भोजन नहीं करो, स्वास्थ्य के लिए भोजन करो। सुख के लिए कपड़े मत पहनो, स्वास्थ्य के लिए कपड़े पहनो। सुख के लिए शादी मत करो, कुल परंपरा चलाने के लिए शादी करो। सुख तो आपकी छाया हो जाएगा, जैसे पुरुष के पीछे पुरुष की छाया, ऐसे ही आपके साथ सुख स्वरूप ईश्वर का जीवन। सुख सहज में है, हीरे मिल गए, जवाहरात मिल गए, प्रमोशन का कागज मिल गया, आप देखते देखते सिराने उन सबको छोड़कर नींद में चले जाते, आराम मिलता है। अगर हीरे जवाहरातों में, मिठाइयों में और प्रमोशन के कागज में सुख होता तो ये छोड़कर आप नींद में क्यों जाते? नींद में कोई आराम का सुख मिलता है ना? इन चीजों के बिना भी कोई सुख है? नींद का सुख तमस है, लेकिन संग्रह और भोग की वासना छोड़ो तो सत्व संजायते ज्ञान सात्विक सुख, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, जो नित्य है, प्रकाशक है, विभू माना व्यापक है, नाम रूप आधार, मति न लखे जो मति लखे, सो मैं शुद्ध अपार। बुद्धि उस सुख को नहीं देखती, लेकिन सुख स्वरूप आत्मा उस बुद्धि को देखता है। जैसे लोहे में, लोहे को अग्नि में डाल देते तो धीरे 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 लोहा अग्नि रूप हो जाता है, ऐसे उस सुख रूप में बुद्धि को विश्रांति दिलाते दिलाते जाओ तो बुद्धि सुख स्वरूप ब्रह्म हो जाती। इसी बात को श्री कृष्ण कहते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये बहुत ऊंची बात है। इसको सुनने मात्र से हजारों कपिला गौ दान करने का आपको फल हो रहा है, आप वो सुन रहे हैं आज। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसके द्वारा सारा दान पुण्य हो गया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम करता, एक क्षण मात्र के लिए उस ब्रह्म परमात्मा सुख स्वरूप में मन को लगाया। भगवान बोलते हैं यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल, मनश्चंचलम अस्थिरम, जहाँ जहाँ मन जाए चंचल और अस्थिर, ततस्ततो नियमेव आत्मन्येव वशम नहीं, वहाँ वहाँ से बुलाकर मन को घुमा के आत्मा में लगाओ। कभी भगवान को या गुरु को देखो और पल के न हिले, मन स्थिर होने लगेगा, सुख आने लगेगा। जीभ को ऊपर नहीं बीच में नहीं तालू में खड़ी कर दो और मन वहां लगाओ जीभ के नोक में, मन के संकल्प विकल्प कम होंगे, भगवत सुख धीरे, एक दिन में छू मंत्र नहीं होगा, थोड़ा अभ्यास होते ही बुद्धि में मन में वो सुख प्रवेश करेगा। वो नित्य सुख स्वरूप है चैतन्य आत्मा, लेकिन बाहर का सुख अनित्य है। बाहर का सुख भोक्ता को कमजोर कर देता है, तन से मन से मति से गति से। कहते हैं कि बड़े से बड़े बुद्धिमान आदमी भी अपने मस्तक का लाखवें हिस्से का ही उपयोग कर पाते, बाकी सब ऐसे ही पड़ा रहता है। क्यों? कि इंद्रियां मन सब बाहर जाते तो उतना विकास नहीं हो पाता। योगी लोग ध्यान करते समाधि करते जप करते तो उनकी प्रज्ञा विकसित हो जाती, प्रतिपन्ना मति आ जाती। ये बाहर के किताब रटा रटी वाले का ज्ञान अलग है, लेकिन जो ध्यान करते उन पुण्यात्माओं की सूझबूझ अलग होती है। भगवान बोलते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यात् आत्मचेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। युद्ध जैसा घोर कर्म भी करो, लेकिन क्या करूं, मुझ परमेश्वर में, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा और ममता रहित संताप रहित होकर कर्म करो। आशा ममता और संताप, ये तीन चीजें छोड़ने को कहा। और भगवान ने क्या कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यात् आत्मचेतसा, मुझ परमेश्वर में सारे कर्मों के फल की छोड़ दे। शरीर आदि अपना नहीं है और शरीर अपन नहीं है। भगवान कहते ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तुम भगवान के वंशज हो, भगवान नित्य है तो तुम्हारा आत्मा नित्य है, भगवान ज्ञान स्वरूप है तो तुम्हारा आत्मा ज्ञान स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है तो तुम्हारा आत्मा भी चैतन्य स्वरूप है। उसी चैतन्य से जड़ हाथ उठता है, उसी चैतन्य की सत्ता से जड़ जीवा बोलती है चखती है, उसी चैतन्य की सत्ता से मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, निर्णय बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, फिर भी जो नहीं बदलता है उस सच्चिदानंद में अपने मन को बुद्धि को जरा विश्रांति दिलाओ। ये बहुत ऊंची बात है, ये बहुत ऊंचा प्रयोग है और बहुत ऊंचा फायदा देने वाला है। जो जो चीजों में मेरा मैं और मेरापन लगे वहां से हटा दो, शरीर को मैं मानने की गलती हटाते जाओ, वस्तुओं को मेरा मानने की गलती हटाते जाओ, परमात्मा को आत्मा को मैं मानो और परमात्मा को मेरा मानो। बस कचरे में जैसे लोहे से लोहा कटता है, हीरे से हीरा कटता है, ऐसे ही ममता से ममता को काटो, तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख दास गए भव पार। मूर्खतावश मान के बैठे हैं कि इच्छा छूटती नहीं है, इच्छाएं तो छूटती जाती है फिर नई नई इच्छाएं करते, तो भोग और संग्रह की इच्छा छोड़ दो, जो हो गया तेरी मर्जी, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा। बोले बेटी की शादी की चिंता नहीं करें, चिंता करने से शादी हो जाए तो खूब कर, क्या करें बीमार पड़े तो जरा औषधि का नहीं करें, वो सब करो, लेकिन उसको इतना महत्व न दो कि अपनी सहजता शांति छूट जाए। मनोविज्ञान 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 क्या खाक जानते हैं विदेशी लोग मनोविज्ञान? मन की कल्पनाओं के ढेर को बोल देते मनोविज्ञान। मनोविज्ञान तो भारतीय संस्कृति में भरा पड़ा है। मन क्या होता है उसको जरा समझो, मन की कैसी वृत्तियां होती है उसको समझो, और आनंद कैसे आता है उसको समझो, और मन और परमात्मा कितना दूरी है वो समझो, ये मनोविज्ञान है। फ्राइड का मनोविज्ञान वो बोलता है कि माँ को देखकर बेटे को काम विकार की इच्छा होती है, लेकिन बाप आड़े आता है इसलिए बाप और बेटे की नहीं बनती, वो रुग्ण मनोविज्ञान है। और बेटी बाप को देखकर बेटी को काम विकार आता है, लेकिन माँ आड़ी आती इसी के लिए बेटी और माँ की नहीं बनती, और फिर उसने अपने अपने दृष्टांत देके इतना पोथे बनाए कि उसको पढ़ के विदेशी कई युवान युवतियाँ सेक्सी हो गए, हस्तमैथुन वाले हो गए, तबाह हो रहे। मिस्टर जोंगो को मैं शाबाश दूंगा, जोंगो ने कहा कि ये मनोविज्ञान फ्राइड की बपोती नहीं है। एक बार अपनी नई माँ को पिता के साथ नग्न देखा तो उसको भी माँ के प्रति विकार आ गया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि माँ के साथ संभोग करने की इच्छा बेटे की पैदा हो जाए। नहीं, माँ और बेटे की माँ और बेटी की नहीं बनती है, बाप और बेटे की नहीं बनती, उसके पीछे दूसरा है, क्योंकि बाप जितनी ऊंचाई को गया और बेटे को रोकेगा टोकेगा कहेगा तो बेटे के मन को जरा अच्छा नहीं लगेगा, माँ भी बेटी को विकसित करने के लिए रोकेगी टोकेगी कहेगी इसलिए अच्छा नहीं लगता। बोले बाप के साथ संभोग करने की बेटी की इच्छा होती है, लेकिन माँ आड़ी आती इसलिए बेटी और माँ का नहीं बनता है, कैसा रुग्ण मनोविज्ञान। अरे 16 साल की दुल्हन हो और 34 साल का जुआन हो, एक दूसरे के गले लगे फिर भी काम विकार नहीं हो सकता है। दुल्हन सजी धजी है और अपने पिता से विदा लेकर ससुराल जा रही, और पिता विदा देते देते अपनी बेटी को गले लगा देता और बेटी बाप को चिपकती है, फिर भी उस समय सद्भाव होता है, तुमने अपनी बेटी की शादी में बेटी को गले लगे हो, अगर कुभाव हुआ हो तो हाथ ऊपर करो, सद्भाव हुआ तो हाथ ऊपर करो, चलो विकार नहीं आए तो। यही कारण है कि हम भगवती को देखते हैं माँ, माँ के भाव से दूसरी देवियों में भी मातृभाव आ जाए, भाव बदलने से विकार बदल जाता है। संभोग से समाधि, ऐसा भाषण करने वालों ने भी बड़ी गड़बड़ी फैला दी। संभोग से समाधि नहीं हो सकती लाला, सत्यानाश जरूर हो सकता है। अगर संभोग से समाधि होती तो बकरा एक दिन में 40 बकरियों के साथ संभोग कर सकता है, मनुष्य करे तो उसकी तो लाश हो जाए। भूंड कर सकता है अधिक संभोग, बकरा कर सकता है, खरगोश करता है, तो क्या खरगोश महापुरुष हो गए क्या, बकरे महापुरुष हो गए क्या? नहीं, संयम से समाधि है। तो ये मन की वृत्ति देखो, एक होती है मूड, बिल्कुल देह को मैं मानना, और खाना पीना आलस्य से पड़े रहना, मूड वृत्ति होती मन की, उसको लय आलस्य में मजा आता है। दूसरी होती है क्षिप्त दशा, क्षिप्त दशा ये कर लूं ये कर लूं ये कर लूं और कुछ अच्छा करूं ताकि मैं मरने के बाद भी स्वर्ग में जाऊं, ये धर्मात्मा तो है लेकिन क्षिप्त दशा वाले। तीसरी होती विक्षिप्त दशा, चौथी होती मन की एकाग्र दशा, एक में ही मन लग जाए बार बार। विक्षिप्त दशा क्या है कि बैठे हैं, पैर हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, कुछ ना कुछ किए बिना नहीं रहते, विक्षिप्त दशा। जो बैल भी ऐसे वैसे होते हैं वो बैल फालतू माने जाते हैं, वो बेच देते बुद्धिमान लोग। तो ये विक्षिप्त दशा होती। चौथी होती एकाग्र दशा, और पांचवी होती है मन बराबर भगवान में लग गया काबू में, निरुद्ध दशा। यह है मनोविज्ञान जयराम जी की। तो यक्ष ने क्या किया, बड़ा मनोविज्ञान का उपयोग किया, अपने ब्राह्मण को समझाया कि भाई धन में, भोग में, वावाई में, संग्रह में कोई सार नहीं, ब्राह्मण देवता कोई सार चीज पाओ। यक्ष चले गए, लेकिन ब्राह्मण फिर से उपासना करने लगा। तो ब्राह्मण के गांव में जो बड़े बड़े राजे महाराजे हो गए, सेठ धनी हो गए और पूर्व काल में मर गए, ब्राह्मण एक दिन उपासना करते करते देखता, अरे ये फलाना सेठ और नरक में, ये फलाना अधिकारी और बड़ी रिश्वत लेता था और बड़ा ठाट से जीता था, अरे ये ऐसा इतना विभीत सा। तो घबराया, राजे बड़े अधिकारी बड़े ठाट मार से जीने वाले जो भी लोग इसकी नजर में थे, वो नरकों में कैसे खद बदा रहे, वो दृश्य दिखा। ब्राह्मण का उपासना साधना मंत्र ध्यान खुल गया, आँख खुल के क्या देखा मैंने, यक्ष देवता प्रकट हो गए, बोले तुमने जो देखा है वो सपना नहीं है, सत्य है। वो लोग यहाँ तो अच्छा अच्छा करके स्वर्ग में जाना चाहते थे और यशस्वी होना चाहते थे, खूब भोग, खूब संग्रह और तो लोगों को अच्छे अच्छे कर्म करके लोगों के आगे अच्छाई का वाहवाही का डंडेरा पीट के यश के भोगी, धन के भोगी, विकारों के भोगी, वो मर के देखो कितना दुख पा रहे। अब ब्राह्मण देवता आपको भी मैं धन भोग संग्रह बाहर से मजा लेने वाला साधन दे दूं तो मैंने आपका भला क्या किया। इसीलिए लोग प्रार्थना करते कि जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जैसे गुरु शिष्य का मंगल ही करते, शिष्य जो मांग ले वो नहीं देंगे, जिसमें उसका मंगल है वो ही देंगे। एक बच्चा गया दुकान पर 100 की या 50 की नोट लेकर, और क्या लेते हो बेटा, ठीक है। उसने मिर्च का पुड़िया बांध दिया, सोडा खार का पुड़िया बांध दिया और लक्ष्मी छाप फटाकड़े दे दिए, बाकी जो 12-18 रुपया बचे थे, वो 3 पुड़ी के छोरा लेकर घर गया। अब वो रास्ते में फटाकड़ा जलाकर हाथ जला दे तो उसकी मर्जी, दुकानदार जिम्मेदार नहीं। सोडा खार खा ले अथवा मिर्चों वाला हाथ आँखों में डाल दे, उसकी जिम्मेदारी। लेकिन अगर पिता की दुकान है और वो 100 की नोट ले जाता है 50 की या 100, करता है, तो पिता वो पैसे ले लेगा और कुछ भी नहीं देगा। ऐसे गुरु और सच्चे हितकारी आपकी पूजा सेवा श्रद्धा सब ले लेंगे, लेकिन आप करके जो मांग रहे हैं वो नहीं देंगे, आपको सत्संग देंगे, आपको विवेक देंगे, वैराग्य देंगे, भगवान की भक्ति देंगे, अनुशासन देंगे और आप में मन को लगाम डालने की एक ऐसी कुंजिया आपके हृदय में डाल देंगे। इसीलिए कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मन चाहे चीज मिल गया, मंगल हो गया, चलो बढ़िया हो गया, लेकिन आखिर क्या। इसलिए जिसके जीवन में सद्गुरु नहीं वो बड़ा अभागा है, जिसके जीवन में सद्गुरु का मंत्र नहीं वो आदमी लावारिश है, उसका मन लावारिश है। जैसे लावारिस चीज की इधर की उधर उधर की उधर धक्के खाती है, ऐसी उसके मन में न जाने कभी कोई वासना आ जाएगी, कभी कोई इच्छा आ जाएगी, कभी कुछ कर बैठेगा, कभी कुछ कर बैठेगा। तो वासना अनुसारी जीवन लावारिस जीवन है, लेकिन धर्म अनुसारी जीवन सवारिस जीवन है। क्या करना क्या न करना, क्या खाना, आज अमावस्या है, पूनम है, पत्नी हंस पड़ी और पति टट्टू हो गया या पति ही करा और पत्नी गले लग गई, नहीं आज एकादशी है, आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, दूर से भाई बहन की तरह शरीर को देखो तो हुआ संयम। पप्पू की माँ अथवा होनहारी पप्पू की माँ तेरे बिना क्या जीना, न देखा दिन न देखा रात और कर दिया काला मुंह, तो एक दूसरे के दुश्मन ही तो हुए बेटे तुम, शादी करके तुम बर्बादी तो कर रहे हो एक दूसरे की। यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिर, भाई मन में आ गया शादी किया तो कोई ऐसा भारती करने के लिए क्या, तो कन्यर शादी किया तो क्या उसको भोग की मशीन बनाने के लिए क्या क्या। तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास को सुना दी कि रात देर को तुम ससुराल पहुंच गए, बोले तेरे बिना नींद नहीं आती, तेरे बिना भी क्या जीना। उस देवी ने सुना दिया कि हाड मास की देह मम तामे इतनी प्रीति, याते आधी जो राम प्रति तो अवस मिटे भव भीती। ये हाड मास से सुख अंदर भरने की जो प्रीति है, इससे तो अंतर आत्मा का सुख जागृत करने की इससे आधी प्रीति होती तो जन्म मरण का दुख मिट जाता और आप महापुरुष हो जाते, आपके दर्शन से लोगों का भला हो जाता। तू सुंदर है, तू ऐसी है, नाक उठा के देखूं तो लींट भरी है, दांत तो थूक से और मरे हुए बैक्टीरिया के बदबू से भरे हुए, आंख से कीचड़ निकलती, कान से खुरेद निकलती, नीचे के अंगों से मलमूत्र निकलता है, तो ईश्वर की कृपा है कि जरा चमड़े का कवर दे दिया, अगर कवर हटा के देख तो खदबद खदबद हो रहा है, बाहर चक्की मक्की अंदर बुरबुर दखी, शरीर को क्या तू नोचता है, क्या रखा है इसमें। स्त्री को पुरुष का शरीर प्यारा लगे, पुरुष को स्त्री का शरीर प्यारा लगे रे, लेकिन ये मुर्दे शरीर इसलिए प्यारा लगता है कि प्यारा परमात्मा चेतन है अंदर, उस चेतन का ध्यान धरे, उस चेतन का आनंद ले और उस चेतन का अनुसंधान करे तो तू कितना प्यारा हो सकता था। तुलसीदास गए कांत में के प्रभु मुझे आपका प्यारा बना दो, संत बना दो। सोचा मैं कामी क्रोधी, मैं कैसे संत बन सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो सत्संग आप सुने ने तो उसका ऐसा प्रभाव रहे कि चाहे कभी मौत आ जाए, यमराज के यमदूतों की ताकत नहीं कि मेरे शिष्यों को नरक दिखा दे। मेरे मंत्र दीक्षा लिए हुए साधक को नरक में जाना पड़े अथवा दूसरा जन्म लेने को आए, किसी का गर्भ मिले ना मिले, फिर बाथरूम में बह जाए, तो फिर मेरा साधक मंत्र दीक्षा का क्या फायदा। तेरे बाप की जय, चुप बैठो, मुझे मेरी जय मत बोलो, आपकी जय में देखना चाहता हूं बस, मेरी जय की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे वाहवाही के कारण सत्संग नहीं करना है, मुझे तो जो सत्संग सुने एक बार जो दर्शन पाए शांति का अनुभव हो जाए, नित्य नवीन प्रयोग कराते नाद अनुसंधान, सामान्य ध्यान जो लगाए उसे वे गहरे में ले जाए, मैं तो ऐसा चाहता हूं। महाराज अब क्या किया उस देवता ने, तुलसीदास जी ने, हे भगवान तू मुझे अपना संत बना दे, मैं कामी कुटिल स्त्री के हाड़मास के शरीर से सुख नोचने वाला मैं कैसे संत बन सकता हूँ, तो संत का सेवक ही बना दे। लेकिन संत का सेवक बनाने के लिए बनने के लिए भी मुकद्दर चाहिए, संत का सेवक मैं बनने के योग्य नहीं हूँ, तो हे देव कम से कम तू संत के द्वार की मुझे गाय बना दे, कि मेरा दूध संत की सेवा में लग जाए तब भी मैं तर जाऊँगा। लेकिन संत के द्वार की गाय बनने का पुण्य तो नहीं है, अच्छा तो घोड़ा ही बना दे, संत कथा करने जाएंगे। मेरी थोड़ी सेवा लग जाएगी, लेकिन संत के द्वार का घोड़ा बनने का भी पुण्य तो नहीं, तो कम से कम प्रभु संत के द्वार का कुत्ता ही बना दे, ताकि उनकी नूरानी निगाह पड़ेगी तब भी हम देर सबेर तर जाएंगे। भगवान कुत्ता क्यों बनाते, घोड़ा क्यों बनाते? सच्चे हृदय से जो भगवान को चाहते तो भगवान अंतर्यामी है, प्रसन्न हो जाते। तुलसीदास को संत तुलसीदास बना दिया, दुनिया जानती। तो आप भी प्रार्थना करो कि प्रभु ये नश्वर दुनिया का जो भोग है, संग्रह है, वासना है, दुनिया की छूट जाने वाली चीजें जानने की इच्छा है, ऐसे तो हम तुझे जाने के जो सुख और दुख के बाद भी रहता है, जो जन्म के पहले था मरने के बाद भी रहता है। हे देव, मनोनिग्रह हो जाए से व्याधि दूर हो जाएगी, चित्त का विक्षेप दूर हो जाएगा, ध्यान करने से मन का प्रसाद आ जाएगा, तो मेरे मन में तेरे आनंद का, तेरे ज्ञान का, तेरे सामर्थ्य का प्रसाद आ जाएगा। उस प्रसाद से सारे दुखों का अंत सदा के लिए हो जाएगा। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्य उपजायते, संशय दूर हो जाएगा और दिव्य मार्गदर्शन मिलेगा। अभूमिकत्व, मान बैठे अपने को धनी, मान बैठे अपने को ऊंचा, मान बैठे अपने को सुखी, सेठ, साहूकार, ये जो है अलब्ध भूमिकत्व मन का, अपने को विशेष मान बैठे, ये संसार की चीजों को पाकर अपने में जो विशेषता है, ये भी एक मन का दोष है, हमारा मनोविज्ञान बोलता है। जयराम जी। और संसार की चीजें नहीं है और अपने को तुच्छ और गरीब और लाचार मोहताज मान बैठे, ये भी एक मन का दोष है। क्या करें, हमारा धंधा नहीं, क्या करें, इनका मकान बड़ा है, हम तो गरीब आदमी। अरे सारी सृष्टि को चलाने वाला सतचित आनंद तुझे कई बार स्वर्ग दिया, कई बार वैकुंठ दिया, कई बार लोक लोकांतर दिया, अभी भी तुझे न जाने क्या देने को वो लालायित है। ऐसा दिलबर तेरे साथ है, तू अपने को कंगाल मानता है, अपने को गरीब मानता है, अपने को मोहताज मानता है, धत तेरे की, मेरा अपमान करता है।